बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा की आज की मुरली है प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि विजयंती, तो सिद्ध है कि विपरीत बुद्धि विनश्यंती। प्रीत बुद्धि किसके साथ? एक शिव बाबा के साथ। और आज बाबा ने दो और उसमें शब्द जोड़े हैं, केवल प्रीत बुद्धि नहीं, तीव्र प्रीत बुद्धि। तीव्र प्रीत, प्रीत तो कईयों से होती है, ऐसे नहीं कि एक से ही होती है, लेकिन तीव्र प्रीत। और दूसरा शब्द जोड़ा है पूरी प्रीत। तो प्रीत बुद्धि केवल नहीं, पर तीव्र प्रीत बुद्धि और पूरी प्रीत बुद्धि। अब इसका बड़ा गहरा राज है कि जहाँ तीव्र प्रीत होती है या पूरी प्रीत होती है, तो फिर वो प्रीत और कहीं बंट नहीं सकती है, किसी और में बुद्धि जा नहीं सकती है। इसलिए आज बाबा ने विशेष इस पर ध्यान खिंचवाया है। और जब पूरी प्रीत है, तीव्र प्रीत है, तो उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे। तो श्रीमत भी बहुत ही गहरी है जो बाबा हमें देते हैं। और सबसे बड़ी श्रीमत क्या है? बच्चे केवल मुझे याद करो, बस। देश है देह के सर्व संबंधों को भूलो और केवल मुझे याद करो। ये केवल शब्द भी बहुत बड़ा गहरा शब्द है। तो बुद्धि और कहीं न जाए, ये बहुत बड़ी कसौटी है। और जब बुद्धि एक से ही है, तो उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। अगर हर आज्ञा का पालन नहीं करते, माना पूरी प्रीत बुद्धि भी नहीं है। और हर आज्ञा माना हर आज्ञा, कितनी प्रकार की आज्ञाएं बाबा देते हैं। और ये जो भी आज्ञाएं बाबा देते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए है। बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, शिव बाबा तो निष्काम सेवाधारी है, हमारे ही कल्याण के लिए बाबा कहते हैं। क्यों इसमें हमारा ही कल्याण है? क्योंकि समय की ही यही मांग है। और सबसे बड़ी बात आज बाबा ने कहा, समय की क्या मांग है? शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन बहुत जरूरी है। दुनिया में आज इतना तामसिक भोजन हो गया है, जो मनुष्यों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है। तो बाबा हमें सात्विक भोजन खाने के लिए कहते हैं। तो आज की मुरली उस पर भी है। हम देवता बन रहे हैं, तो देवताओं को भोग लगाते हैं ना, तो हम वही खाएंगे जो देवताएं खाते हैं। देवताएं शुद्ध आहार खाते हैं, ऐसे नहीं कि हम जो खाते हैं वही देवताओं को लगाते हैं। हाँ, दुनिया में ऐसे भी है, हम जो खाते हैं ना वही देवताओं को लगाते हैं। मैं एक जगह गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, वहाँ ढेर सारी टॉफीज रखी थी। टॉफीज, टॉफी होती ना, स्वीट्स, तो ढेर सारी स्वीट्स रखी थी कोई देवी के आगे मंदिर में। तो मैंने पूछा कि क्या आप इसका भी भोग लगाते हो? तो कहा, हाँ बहन जी, इसका भी भोग लगाना पड़ता है। हमने कहा, ये तो आप बाजार से खरीदते होंगे और भोग लगाते हो, चलो तो टॉफी का भोग क्यों लगाते हो? तो कहा कि बच्चे बहुत आते हैं, छोटे बच्चे बहुत आते हैं यहाँ, और टॉफी के बहाने आते हैं। उनको यहाँ टॉफी मिलती है, तो ढेर सारे बच्चे आते हैं, माता पिता आते, नहीं तो बच्चे तो आते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को टॉफी मिलती है और वो भोग में रखी जाती है, इसीलिए हम हाँ टॉफी रखते हैं बच्चों को देने लिए। खैर, हर एक की अपनी अपनी भावना है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम देवता बन रहे हो तो तुम्हारा भोजन कितना शुद्ध होना चाहिए, उस पर बाबा ने आज जोर दिया है। हाँ, फिर बाबा कभी कभी कहते, आज भी कहा है, क्या सिगरेट बीड़ी का भोग लगाते हैं क्या? हाँ, सिगरेट बीड़ी का भोग लगाते हैं, तो सिगरेट बीड़ी तो कभी भगवान के आगे भोग नहीं लगाते हैं, फिर तुम क्यों पीते हो सिगरेट? तो कई कहते हैं कि इसके बिना पेट साफ नहीं होता है, कई ऐसे भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बुरी आदतें छोड़ दो, क्योंकि ये देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता है। तो बहुत रमणीकता से बाबा ने कहा है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 11/6/2026 है। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए, क्योंकि पूरी प्रीत बुद्धि होगी तो पूरा वर्षा भी मिलेगा, तो पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए, अंडरलाइन, तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? नए नए आते हैं ना तो ज्ञान अच्छा लगता है, तो कौन से अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे दैवी संप्रदाय के हैं। तो जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? बहुत घूमते रहेंगे, आज बाबा ने कहा है। उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। कौन से अक्षर? कि बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे और हम देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। उनको अपने आप ही बुद्धि में आएगा, हम देवता बन रहे हैं, भगवान से वर्षा ले रहे हैं, तो हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोले नाच से निराला कोई और नहीं, फिर आता है, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना, भोलेनाथ के बच्चे सब बैठे हैं यहाँ, तो भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हो? भोलानाथ से। ये किसके माँ वाक्य हैं? भोलानाथ के माँ वाक्य। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे। आत्माएं सुन रही है इन कानों से, अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं, टेप पर मुरली सुनते हैं तो समझते हैं कि शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। डायरेक्ट तो समझते ही हैं, लेकिन टेप पर भी हूबहू वही शब्द बाबा के सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं तो समझते हैं, शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा अपना डायरेक्ट परिचय देते हैं, मैं सभी, तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? परम पिता है, फादर है, ये कौन कहते हैं फादर है? आत्मा कहती है। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। तुम बच्चों को ही अब ये ज्ञान मिला है, तुम आत्मा हो, तुम उस फादर के बच्चे हो, बाबा कहते हैं, और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार और एक निराकार। निराकार बाप को क्या कहते हैं? परम पिता। ये समझानी और कोई दे न सके। निराकार बाप अलग, साकार बाप अलग। निराकार बाप को कहते हैं परम पिता। ये समझानी और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ भी न सके। क्या पूछ न सके? बाप ही पूछ सकते हैं। क्या पूछते हैं बाबा? बाप ही पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, ये तुम किसके लिए कहते हो? किसके लिए तुम ये कहते हो परम पिता परमात्मा या गॉड फादर? वो कौन है? किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? किसके लिए कहते हो? अब लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे क्या? गॉड द फादर, बाबा कहते हैं ये गॉड द फादर, ये लौकिक बाप को कहेंगे क्या? हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, सुप्रीम फादर। वो तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है, है ना? कितने शब्द यूज करते हैं लेकिन उनमें बाप है वो पिता है ये सिद्ध नहीं होता है। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा कि वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं, कितने पिताएं हैं। एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन? चलो वो कहे भी, किसी से पूछो कितने पिता हैं और वो कहे कि एक लौकिक एक पारलौकिक, हाँ थोड़ी बहुत समझ हो इस बात की, तो फिर उनसे पूछा जाता है इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों में बड़ा कौन है? तो जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर बड़ा है, उनकी महिमा है। सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप है। ये भी अभी तुम समझते हो कि वही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते। बाप ने समझाया है, अब तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है। दो पिता समझा करके फिर अभी पारलौकिक पिता से ही हमारी प्रीत है, ये बाबा समझाते हैं। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, है ना? विनाश का काल है, कितना विनाश की तैयारी करते रहते हैं, हथियार बनाते जाते हैं, बेचते जाते हैं। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से, पैसा तो देना पड़ता है, पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं। उधार पर भी लेते हैं कई देश, है ना? इतना पैसा अभी नहीं है तो उधार पर भी लेते हैं सब विनाश के हथियार। तो बाबा कहते हैं विलायत वाले बनाते हैं, वो फिर बेचते रहते हैं। अब भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, अभी धीरे धीरे भारत वाले भी बनाते जा रहे ना, भारतवासी थोड़े एरोप्लेन आदि बेचते हैं, ये सब चीजें बाहर से आई हुई है, विनाश की चीजें सब बाहर से आई हुई है। अब जो चीज खरीद करेंगे तो जरूर काम में भी लाएंगे, केवल खरीद करके रखने लिए तो नहीं है ना, काम में भी लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। इतनी महंगे महंगे जेट लेते हैं, जेट बॉम्बर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं, बाबा कहते हैं रखने लिए थोड़ी लेते हैं। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए ना, यूरोप कहो अमेरिका कहो जो कहो, वहाँ ये बहुत हथियार बनते रहते हैं तो वो और बेचते रहते हैं, खूब उससे कमाते हैं, उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, इसीलिए भारतवासी उस बात से निश्चिंत है कि यहाँ कोई बॉम्ब पड़ेगा नहीं, भारत भगवान का जन्म स्थान है तो यहाँ कोई बॉम्ब नहीं गिरेगा। बाकी विदेश में तो बहुत डर है, कभी भी बॉम्ब गिर सकता है। अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है, बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और जन्म भी वहां ही लेने हैं, भगवान को जन्म भी वहीं लेते हैं जहां कभी खत्म नहीं होना है, जो देश कभी खत्म नहीं होता है उस देश में भगवान को आना है। अब जो देश खत्म हो जाएंगे बॉम्बिंग में तो सब खत्म हो जाएंगे, तो उस देश में भगवान थोड़ी आएगा, भगवान उसी देश में आता है जो अभी अविनाशी खंड है, जो कभी खत्म नहीं होना है। तो बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं पर शिव बाबा कब आते हैं ये पता नहीं है। आते भी उस समय है, कब आते हैं बाबा, जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वो है यूरोप वासी यादव संप्रदाय, जो सतयुग में होते नहीं, न कौरव होते हैं न यादव होते हैं, सतयुग में ये होते नहीं, न बोधी न क्रिश्चियन, ये भी नहीं होते हैं। अब बाप कहते हैं उनों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, चलो मानते तो हैं लेकिन सर्वव्यापी कह देते हैं तो जैसे विपरीत बुद्धि हो गई। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में क्या हो गए, पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं, भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब नाटक पूरा होता है, 84 जन्म लिए हैं पूरे हो रहे हैं, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है, तुमको बाप राज योग सिखला रहे हैं, वो है सबकी, ये है कौन सा समय चल रहा है, ये है सबकी कयामत का समय। कयामत का समय माना सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय, और सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय अर्थात मौत का समय, क्योंकि मौत होगा तभी तो सबके हिसाब किताब चुकतू होंगे। तो कयामत का समय, सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय, मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तो कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, हम भगवान से प्रीत बुद्धि बनते हैं तो कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है, वो तो सब है रचना, देहधारी जो भी है वो सब है रचना, उनसे वर्षा तो मिल न सके, रचना को रचना से वर्षा तो मिल न सके, भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है। ये तो अच्छी रीति से समझाया गया है। अब तुम बच्चे समझते हो कि उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। इसमें भी केवल प्रीत बुद्धि नहीं, बाबा ने कौन सा शब्द कहा, इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं वो बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। तीव्र प्रीत वाले पूरी प्रीत बाप से रखते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वो बाबा ही सत्य बताते हैं। और वो बाबा सत्य बताते हैं, क्या सत्य बताते हैं, कि और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है। अब जो मकान टूट जाना है उससे क्या प्रीत रखेंगे। तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। बाबा ने जब ये मुरली चलाई थी तब तो फिर भी इतना खराब नहीं होगा, अभी तो कितना खराब हो गया वायुमंडल। देखते हो कितने हंगामे होते हैं तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं, अब ये खलास होते हंगामे होते रहते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में तो नई दुनिया को याद करना पड़े, जहाँ जाना है उसको याद करना पड़े, बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई को याद करने से कुछ भी मिलेगा नहीं, अंडरलाइन, और कोई को याद करने से कुछ भी मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों आदि को याद करते रहते हैं, फिर देवी देवताओं को भी याद करते हैं। लौकी को तो याद करते, ऐसे नहीं कि फिर देवताओं को याद नहीं करते, उनको भी याद करते रहते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। हाँ, महाभारत में आता है जब भीष्म पिता में शैया, ये बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, अर्जुन मिलने गया उनसे, तो भीष्म पिता ने कहा प्यास लगी है, तो अर्जुन ने तीर मारा और बस वहां से गंगा निकल आई जो भीष्म पिता को पानी दिया। दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। अब गंगा जल मुख में देते हैं तो समझा कि गंगा जल मुख में होगा तो अभी प्राण तन से निकलेंगे, तो गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। अब बाप कहते हैं यहाँ तो है ज्ञान की बात, केवल वो गंगा पानी वो जल की बात नहीं है, यहाँ तो है ज्ञान की बात। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है, ये ज्ञान सुनने की बात है, गंगा जल वो केवल वो जल की बात नहीं है। फिर बाबा कहते हैं देखो अमृत पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है, ज्ञान अमृत है लेकिन ये कोई ज्ञान पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, आज भी पिएंगे ना सभी अमृत पिएंगे, तो भोग के दिन अमृत जो पिलाते हैं हाँ वो तो उससे अमर बन जाएंगे, ऐसे तो नहीं है। पता है वो तो मीठा पानी है, पर कईयों को बहुत अच्छा लगता है, कहते और दो अच्छा लगता है, हाँ मीठा मीठा पानी, उसमें गुलाब जल भी है, उसमें केसर भी है, इलायची है, बहुत अच्छा लगता है, तो परंतु है तो मीठा पानी। बाकी ये है ज्ञान की बात, ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, ज्ञान किसको कहेंगे? ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, अब सब तो ले न सके, सब अगर ले गए तो सब शुरू में आ जाए, सब तो इतने सारे तो नहीं आएंगे सतयुग में, इसलिए सब तो ले न सके 84 जन्म। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं, तो बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण का राज्य, सतयुग था दैवी राज्य, शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचना रचते हैं। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। स्वर्ग भी पूरी है ना, तो शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तो तुम्हारी क्या है, क्या है हमारी? विनाश काले प्रीत बुद्धि, इसलिए विजयी है हमारी। विनाश काले बाबा से प्रीत बुद्धि है, तीव्र प्रीत बुद्धि है, पूरी प्रीत बुद्धि है, इसलिए बाबा कहते हैं विजयी हो। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, ये अच्छी रीति याद रखना। सारे विश्व पर हम जीत पाते हैं, ये अच्छी रीति याद रखना। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे, तो पुरानी दुनिया को छोड़ना है ना? जा रहे हैं तो पुरानी दुनिया को तो छोड़ना है। ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है, ये संबंध नहीं है, बाबा कहते ये बंधन है। क्यों सब बंधन है? क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ये संबंध बने हैं, और जो कर्मों के हिसाब किताब अनुसार जो संबंध होंगे वो तो बंधन ही होंगे, इसीलिए इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। ये अंतिम जन्म है ये विकारी बंधन, फिर तुम दूसरे जन्म में जाएंगे तो विकारी बंधन में नहीं आएंगे, वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। निर्विकारी संबंध इस समय सब है, और क्या नाम देंगे इस बंधन को? आसुरी बंधन। विकारी बंधन, आसुरी बंधन, कर्मों के हिसाब किताब का बंधन, आसुरी बंधन। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, शिव बाबा से प्रीत केवल तुम ब्राह्मणों की ही है। क्यों? केवल हम ब्राह्मणों की क्यों है? क्योंकि तुम उनको अच्छी रीति जानते हो, और परमात्मा को जानते ही नहीं अच्छी रीति, तो फिर वो सच्ची प्रीत बुद्धि भी कैसे बने? क्योंकि यथार्थ रीति तुम ही जानते हो, बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे उतना क्या होगा? उतना बहुतों का कल्याण करेंगे। ज्ञान समझाते जाएंगे, बाप का परिचय देते जाएंगे, उनका कल्याण करते जाएंगे। जितना तुम औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही फिर होशियार है, अच्छी तरह समझ लेते हैं तो होशियार हो जाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। अच्छा समझते हैं, अच्छा समझाते हैं तो बाबा कहते हैं वो होशियार है, वही ऊंच पद पाएंगे। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बाबा के बच्चों पर, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, उनको पहचानो, उनको याद करो, उनसे सच्ची प्रीत रखो, तभी बाबा कहते हैं पतित से पावन बनेंगे। और कोई उपाय नहीं है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं, बाबा कहते हैं जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर घूमेंगे कि हमको बाबा को याद करना है, हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम दैवी संप्रदाय के हैं, तो ये अक्षर घूमेंगे, समझेंगे ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं तो हमारा भोजन भी कितना शुद्ध होना चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो हमारा भोजन भी कितना शुद्ध होना चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्व गुण संपन्न भी यहाँ ही बनना है ना, वहाँ थोड़ी जाकर बनेंगे, यहाँ ही बनना है। अभी तुम बन रहे हो, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं क्या देवताओं के आगे? सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, बाबा ने सीधी बात कह दी, अगर सिगरेट पीता है कोई तो वो ऊंच पद पा नहीं सकता, है ना? सिगरेट कितना होता है? 3 इंच का, 3 इंच भी कहाँ होता, कई बार और छोटा होता, परंतु मनुष्य कितना? 6 फीट, तो 3 इंच का गुलाम बन जाता है वो 6 फीट का इंसान। तो बाबा कहते हैं सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, ये कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे, बुद्धि तमो प्रधान बन जाएगी ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है, तो बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, अभी हम लोगों का ये अभियान चल रहा है ना, कितना जबरदस्त ये अभियान चल रहा है, बहुत अभियान चल रहा है, हमारे डॉक्टर बनारसी भाई लगे हुए हैं इसमें, सब जगह जाते हैं। आपके वहाँ भी अभियान चला होगा ना, लुधियाना वाले, आपके यहाँ ये अभियान चला व्यसन मुक्ति का, जिनके वहाँ चला है वो हाथ उठाए, बहुतों के तो उन्होंने सहज सिगरेट वगैरह सब छोड़ा कि नहीं? हाँ, बहुतों ने छोड़ा है, तो फिर वो क्योंकि सरकार उसका वो प्रूफ मांगती है तो उनको लिखित में देते हैं कि हमने बरोबर इतने लोगों का ये बीड़ी सिगरेट सब छुड़वाया है। तो बाबा कहते हैं तो समझाने दी जाती है देवताओं को, कभी ये भोग नहीं लगाया जाता है तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वो बांस आती रहेगी। अब कोई भी एक सिगरेट भी पीता है ना तो भी बांस आती है, ऐसे नहीं कि नहीं आती है, आती है, पता चलता है, क्योंकि वो बोलता है तो उसकी स्मेल वो उसके श्वास में भी होती है। और लहसुन प्याज खा करके अगर आया हो वो तो बहुत ही बांस आती है। तो बाबा कहते हैं तुम छीछी चीजें खाते रहेंगे तो वो बांस आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है, पता चल जाता है ये शराब पी के आया है, ये सिगरेट पी के आया है, तो दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, क्यों बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं? तुमको वैष्णव बनना है, पक्के वैष्णव, विष्णु की वंशावली, पक्के वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है तुम भी विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। वैष्णव अपने आप को विष्णु की संतान मानते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम भी दैवी संतान हो। यहाँ तो तुम ईश्वरीय संतान हो, भविष्य में जाएंगे तो बनेंगे दैवी संतान या ईश्वरीय संतान हो। ये तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है, देवताओं से भी उत्तम तुम हो। और नशा बाबा चढ़ाते हैं, देवताओं से भी उत्तम तुम हो, तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। क्यों देवताओं से भी उत्तम हम है? क्योंकि हम औरों को देवता बनाते हैं। देवताएं किसी को देवता नहीं बनाएंगे, तो हम तो देवताओं से भी उत्तम हो गए ना, क्योंकि हम ही औरों को देवता बनाते हैं। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो, ये है बेहद के बाप की मिशनरी। सबको ईश्वरीय संतान बनाना, उन सबको देवता बनाना, ये ईश्वरीय मिशनरी है। क्रिश्चियन लोगों की भी मिशनरी होती है, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते रहते हैं। तो तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशनरी। तुम क्या करते हो, किसको कन्वर्ट करते हो? तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। पहले शूद्र थे शुद्ध धर्म में, फिर ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हुए, फिर बाबा कहते हैं तुम फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, मर गए ना सब, जीते जी मरे हुए बैठे हैं हम यहाँ। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर के देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा, ऐसे नहीं अभी देवता बन जाएंगे, वो जब गर्भ से जन्म लेंगे तब देवता कहलाएंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा, यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया। अभी शिव बाबा के यहाँ को गर्भ के बच्चे नहीं बनते, यहाँ धर्म के बच्चे बनते हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा ने धर्म का बच्चा बनाया है, तुम धर्मात्मा बनते हो। धर्म का बच्चा बनकर धर्मात्मा बनते हो, तो किस लिए धर्म का बच्चा बनाया? धर्मात्मा बनाने लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया है, तो बच्चों को बाप सिखलाते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, लक्ष्मी नारायण देखो, देवताएं देखो, कितने ऊंचे हैं। है तो वो भी तो देहधारी मनुष्य, ये मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, सोचो हम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना, ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। गीता में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाया है विराट रूप में, लेकिन ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अभी बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना, देखी ना कैसे बाजोली खेलते हैं, सिर पहले सिर से पैर तक जाते हैं, फिर पैर और सिर दोनों मिलते हैं, तो ये बाजोली होती है ना। तो शूद्र बना पैर, पैर से एकदम सिर तक, वो है ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं अब तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। बाबा बीच बीच में सतयुग की यादें दिलाते हैं कि तुम वहाँ कैसे होंगे, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबर वार इस समय के पुरुषार्थ अनुसार तुम सदा सुखी रहेंगे। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे, राजाई घराने में सुख बहुत है, ऐसे नहीं कि प्रजा घराने में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तो होगा ही ना। तो राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाई कम होती है, तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आ गई है, आ गई थी स्मृति, हमारे पूरे 84 जन्मों की स्मृति आ गई है। तो बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, कोई के 84 जन्म, कोई के 80 जन्म, कोई के 50 या 60 जन्म भी होंगे, हाँ सभी के तो नहीं होते 84। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो, ये भी नशे की बात है, सबसे जास्ती सुख हम भारतवासी देखते हैं। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, सारी कहानी तुम्हारे ऊपर है ना, सारी कहानी हम बच्चों पर है, तो तुम्हारा इस ड्रामा में नाम बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो, तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं, सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं है, हम पूज्य बन जाते हैं तो किसको भी सतयुग में पूजते नहीं है, न हम किसको पूजते हैं न हमको कोई पूजता है, सतयुग में न हम किसको पूजते हैं न हमको कोई पूजता है, वहां हम है ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती है, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं, टिप्परी घिस जाती है ना, माथा टेकते टेकते माथा टेकते हैं। द्वापुर में हम पुजारी बनना शुरू होते हैं, द्वापुर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं, अंत में अभी अंत आ गया तो अंत में क्या हो गए हैं, अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं, कितनों की पूजा करते हैं, सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनकी भी कोई बैठ पूजा करते हैं, अगर शरीरों की पूजा करते हैं तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है भूत पूजा, भूत पूजा, पंच तत्वों के शरीर की पूजा। हर एक में 5 भूत है, एक तो ये शरीर को भी कहते हैं पंच भूतों का बना हुआ है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसको पंच महाभूत कहते हैं, और फिर वो 5 भूत विकार, वो विकार भी अंदर है, हर एक में 5 भूत है, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध लोभ मोह इनका भूत, भूत संप्रदाय कहो। आज बाबा ने नाम क्या दिया है दुनिया को, इस समय कलयुगी दुनिया में भूत संप्रदाय, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है, वो असुर भी जो दिखाते हैं ना भूत की तरह दिखाते, तो आसुरी संप्रदाय कहो या भूत संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, बाप आते हैं, हाँ बाप आते हैं किस लिए, भूतों से छुड़ाने, ये भूत पूजा से भी छुड़ाने और जो 5 भूत विकार है उनसे भी छुड़ाने, और अपने साथ योग लगाए देवता बनाने, इसलिए बाप आते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, तो परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है, एक ही पावन, हाँ पतित पावन है, तो और कोई भी पतित पावन हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए क्या करना होगा? ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सब को छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल देनी है। दूसरा, इस विनाश काल के समय क्या करना है? विनाश काल के समय एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल के समय एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। कैसे बनेंगे सिमरण योग्य? क्योंकि संगम युग पर सिमरण योग्य बनते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त और युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण होने के लिए कब क्या चाहिए? आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। हाँ, सिमरनी होती है ना, तो सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। सिमरण लायक बनने के लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से क्या होगा? हर संकल्प योग युक्त बनने से हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। क्योंकि योग युक्त है तो युक्ति युक्त भी होंगे। तो योग युक्त बनने से हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है। योग युक्त होंगे तब युक्ति युक्त भी होंगे, और जो युक्ति युक्त है उनसे कोई भी अयुक्त कर्म व संकल्प हो नहीं सकता। ये भी कनेक्शन है। स्लोगन, निमित और निर्माण चित, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। हम सब सेवाधारी है, तो निमित और निर्माण चित यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। ये अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, अपना स्वभाव सरल बनाओ। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ क्या होगा? सरल चित नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नैनों से मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल दिमाग बोल सब एक समान होगा। दिल दिमाग बोल सब एक समान होगा। दिल में एक बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित, निरअहंकारी, निरस्वार्थी होते हैं। सरल चित वाले सदा निर्माण चित, निरअहंकारी, निरस्वार्थी होते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कविता बेन
आप ऊपर आ जाओ।
ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सब बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और जो भी भाई बहने आज वतन में बाबा के पास जाएंगे वो हाथ खड़ा करें। भट्टी वाले सब जाएंगे ना, बाबा तो आप सबको वतन में इमर्ज करके याद करते हैं, बाबा वतन में बुलाते हैं। तो आज सबको बाबा के पास वतन में जाना है। और जिस किसके मन में कोई भी संकल्प है, कोई भी बात बाबा से करनी है, बाबा के सामने पहले से ही रख दो संकल्प के द्वारा। वतन में पहुंच जाओ, बाबा के सामने रख दो, फिर वतन में बाबा से मिलो और बाबा जो सुनाए वो सुनना है। और बाद में तो बाबा हर बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते ही हैं। देखना आज आप सबको हर प्रश्न का उत्तर बाबा स्वयं ही देंगे। तो इसलिए आप सबको वतन में चलना है, बाबा को भोग स्वीकार कराना है। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वह हम सुनेंगे, और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा। एक लाइन होगी वो जो एक स्टैंड है वो भाइयों के लिए, दूसरी लाइन भट्टी के भाई हाथ खड़ा करें, भट्टी के भाई यहाँ बीच में आएंगे अमृत पीने के लिए, और भट्टी की टीचर्स बहने ये दूसरे कैमरा स्टैंड के पास आएंगे। उसके बाद भट्टी की बहनें होंगी, और उसके बाद दो लाइनें होंगी अन्य बहनों की अमृत पीने के लिए। तो आप सबको बाबा के पास जाने के लिए आज तो बाबा विशेष याद भी कर रहे हैं। और आपको मालूम है जब गुरुवार का दिन होता है तो बाबा पहले से बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, देश विदेश के बच्चों को अपने पास वतन में बुलाते हैं। और बाबा बहुत प्यार करते हैं, बहुत अनुभव करते हैं। और गुरुवार के लिए हम देखते हैं बुधवार से शुरू हो जाता है, बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है, बाबा को भोग स्वीकार कराना है। कई आते कहते हमारा बाबा को भोग स्वीकार कराना, आज देखना हम तो कराएंगे लेकिन आप क्या करोगे? जिन्होंने भोग के लिए कहा हाथ खड़ा करो, सबको अपना ही भोग स्वीकार कराना है। बाबा देखेंगे, आपसे बात करेंगे, और आप बाबा से अपने ही हाथों से बाबा को भोग स्वीकार कराएं, और बाबा भी आप सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। अच्छा, अभी हम चलते हैं बाबा के पास, और बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
अतीन्द्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समय पर। पंचेन्द्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समय पर। दिव्य ज्योति
अंबर। अमृत पीते हैं, तेरी आत्मा अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची बाबा के पास तो पहले से ही बहुत से भाई बहने देश विदेश के पहुंचे हुए थे। हर एक के सिर के पीछे सूर्य की तरह चमकता हुआ एक क्राउन दिखाई दे रहा था और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा, जब अच्छे बाबा और वतन का संकल्प करते हैं तो बच्चों के मन में एक तो इतनी खुशी और दूसरा प्योर थॉट्स आने के कारण उसका संपन्न स्वरूप बाप देखते हैं और बाबा भी बच्चों के भाग्य संपन्न स्वरूप को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा बच्चों को दृष्टि के द्वारा वरदान तो दे ही रहे थे, तो बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, आओ बच्चे। बाबा ने कहा, देखा कि आपसे पहले ये सब बच्चे पहुंच गए हैं। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत फास्ट है। तो मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बच्चों ने संकल्प किया और वतन में बाबा ने इनको बुला लिया। फिर बाबा के हाथ में छोटा सा बहुत सुंदर गोल्डन बॉक्स दिखाई दे रहा था, तो मेरा भी ध्यान गया और सब बच्चे देख रहे थे बाबा के हाथ में क्या गोल्डन बॉक्स है। तो बाबा ने सबको दिखाया। बाबा ने कहा कि बाबा ये गोल्डन बॉक्स सब बच्चों को देंगे और बच्चे इस बॉक्स को खोले। तो सबके पास छोटा सा गोल्डन बॉक्स था, वो पहुंचा और जब उसको खोलने लगते हैं तो खुलता ही नहीं था। किसी बच्चे का थोड़ा सा खुला, किसी का लॉक था, कोई उसको लॉक को ढूंढ रहा था। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। जैसे ध्यान से देखा, उस पर लिखा हुआ था क्लियर कनेक्शन। तो जैसे क्लियर कनेक्शन और दूसरी तरफ साइड में लिखा हुआ था सच्चाई और सफाई, और नीचे लिखा हुआ था, उस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ था बाबा मेरा साथी। तो जैसे उसको टच करते थे धीरे धीरे वो लॉक खुला, और लॉक खुलते ही उसके अंदर अनेक प्रकार के खजाने थे, और खजाने इतने थे और जैसे बच्चे लेते जा रहे थे बढ़ता जा रहा था। फिर बाबा ने कहा, सब खजाने आप बच्चों के हैं। तो बच्चे तो इतना खुश होते हैं और उस बॉक्स से खजाने अपने हाथ में उठा लेते हैं, और जैसे हाथ में उठाते हैं तो उन खजानों का एक पेड़ की तरह छोटा सा पौधा होता है ना, वैसा बन जाता। तो उन पत्तियों पे एक एक खजाने लिखे हुए थे और ऐसे लिख कर खड़े हैं, तो धीरे धीरे वो पेड़ ऊपर की ओर उठता है और बड़ा होता जाता है, और बड़ा होते होते इतना विशाल हो जाता है, और कुछ सेकंड में कईयों का पेड़ जो है ना वो उड़ने लगता है, जैसे गुब्बारे उड़ते हैं ना ऊपर की ओर, उड़ता जाता है। ऐसे ऊपर की ओर वो उड़ता जा रहा था। बाबा ने कहा, संगम के अंदर बच्चों का भाग्य बहुत बड़ा है, मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा है, और बाप के साथ क्लियर कनेक्शन होने के कारण सदा ही सर्व खजानों से भरपूर है, और वो खजाने बढ़ते रहते हैं। एक तरफ संगम का समय मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा,
दूसरी तरफ संगम में बहुत ज्यादा प्राप्ति है, और तीसरी तरफ बाबा ने कहा सूक्ष्म माया का प्रभाव है। सूक्ष्म माया के प्रभाव में पता भी नहीं पड़ता है मैं, मेरा, मैंने किया, ये प्रभाव होने के कारण जो भी प्राप्तियां हैं, भाग्य मिला है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। और फिर बाबा ने कहा चौथी तरफ समय अपना स्वरूप दिखा रहा है, समय ऐसा है एक तरफ भाग्य बांट रहा है, दूसरा समय परिवर्तन का इशारा दे रहा है, तीसरी बात बाबा ने कहा समय इशारा दे रहा है कि अभी समेटने का समय है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे अभी भी हैं जो सब कुछ करते हुए विस्तार की ओर और उसमें मेरापन ज्यादा है। बाबा ने कहा कराने वाला बाबा है, नियमित बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को समय को देखते हुए विस्तार में सार समाया हुआ रखें, क्योंकि विस्तार की ओर ज्यादा है। तो मैं संकल्प भी कर रही थी बाबा सेवा तो करेंगे ना, विस्तार तो बढ़ाएंगे, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने कहा सेवा भी करनी है, बाप को प्रत्यक्ष भी करना है, लेकिन बाबा ने बच्चों को विशेष जो बताया है वो है अपने संपन्न स्वरूप के द्वारा समय को समीप लाना, बाप को प्रत्यक्ष करना, और संपन्नता में ही क्या समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है। तो ऐसे करते फिर बाबा ने फिर से वही बॉक्स दिया, तो जैसे वो बॉक्स को खोलते थे उस बॉक्स के अंदर जितने प्रकार के खजाने निकलते थे वो खजानों से बच्चों का प्रत्यक्ष रूप, ईष्ट रूप, दैवी रूप बनता जा रहा था। तो बाबा ने कहा अभी समय है बच्चों को अपने भक्तों की पुकार को सुन करके अनुभव कराना, और भक्तों को शांति की अंजलि देना, जो दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को ऐसा वाइब्रेशन दे, उनको ये अनुभव हो कि अब परमात्मा हमारे समीप है और परमात्मा के साथ का अनुभव हो। तो बाबा ने कहा समय तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे समय को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं। समय के भिन्न भिन्न रूप हैं, एक है प्राप्ति, दूसरा परिवर्तन है, तीसरा बच्चों को संपन्न बनाने का, चौथा अब घर जाना है, और फिर जो है बच्चों को अपनी नई दुनिया में राज्य करना है। इसलिए समय को देखते हुए बच्चों को विस्तार में ना जा करके समेटना है, और समेटते हुए बाबा को साथी बना के चले। तो फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, प्यार करते बाबा ने अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया। फिर मैंने क्या देखा कि बाबा के हाथ में छोटा सा चमकता हुआ स्टार था। बाबा ने कहा देखो इस स्टार को, उस स्टार को जैसे ध्यान से देखते थे तो तीन प्रकार के स्टार आ रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा बिंदी स्टार है, ड्रामा स्टार है, बाबा स्टार है। बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि साइलेंस की बिंदी का बार बार अभ्यास करें, क्योंकि बोलते मीन्स बाबा का भाव ये था विस्तार में ज्यादा जाते हैं तो साइलेंस की बिंदी का कैसे अभ्यास करना है। एक अभ्यास बताया कि स्वयं के लिए जितना साइलेंस का अभ्यास करेंगे उतना खजाने बढ़ेंगे, उतना संपन्न, उतना प्रत्यक्ष बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। दूसरा बाबा ने कहा भी साइलेंस की जो बिंदी लगानी है समय की परिस्थितियों को देखते हुए ज्यादा चिंतन नहीं, ड्रामा साइलेंस की बिंदी लगाओ। और तीसरा बाबा ने कहा कि बीच बीच में जो साइलेंस की बिंदी है वो आपकी सारी एनर्जी का ही स्रोत है। जैसे साइंस वाले एक अणु से इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, तो बाबा ने कहा अभी ऐसे साइलेंस की बिंदी लगाओ कि चारों तरफ ऐसा एनर्जी का लेवल हो जो लेवल आपके तक नहीं, पूरे विश्व के अंदर शांति और शक्ति की किरणें फैलाए। ये कार्य अभी बच्चों को समय को देखते हुए जरूर करना है, क्योंकि समय फास्ट गति से जा रहा है। फिर तो बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे और बाबा को मैंने भी भोग स्वीकार कराया, बाबा ने भी बच्चों को भोग स्वीकार कराते हुए वो गोल्डन बॉक्स भी दिया और साथ साथ 3 स्टार्स भी बच्चों को दिए। बाबा ने कहा संपन्न भी बनना है, अभ्यास भी करना है, समय और परिस्थिति को देख करके और शक्तिशाली वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं। फिर बाबा ने उन सब बच्चों को इमर्ज किया जिन्होंने अपने शुभ संकल्प बाबा के पास भेजे थे। बाबा ने कहा बाप के पास पहुंचना और उनके संकल्पों का उनको स्वतः ही बाबा जवाब दे देते हैं। सबको याद दिया। ओम शांति।